सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
वेलकम टू सोच विचार। आज हम फिर अपने एक टॉपिक पे वापस जा रहे हैं जो कि मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान की फ्यूचर इसमें लाई करती है और पाकिस्तान का सारा मुस्तकबिल इस मौजू पे है। शहरों में लोग कहते हैं कि शहरों में सब तरक्की होती है और लोग कहते हैं शहरों में सब दरियाफ्तें होती है और लोग कहते हैं शहरों में सब तजारत होती है। हत्ता के लोग कहते हैं कि इंसानी तारीख सारी शहरों में लिखी गई है, रोम से लेके एथन से लेके बगदाद से लेके लंदन से लेके फ्लोरेंस से लेके पेरिस से लेके शहरों में हिस्ट्री लिखी गई है। पर हमारे मुल्क में बहुत एक रीत है कि हम सोचते हैं देहातों में हिस्ट्री लिखी जाती है, तो हमें बड़ा शौक है देहात का। रोज़ कोई ना कोई अखबार में लिख देता है हम एग्रीकल्चरल मुल्क हैं। हालांकि अब देहात में मेरे ख्याल कोई रह भी नहीं गया और हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत गिर गया है। अब GDP का तकरीबन 20% रह गया एग्रीकल्चर। तो खैर चले आज बात करते हैं शहरों पर। फिर हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग नौजवान हैसियत है, ज़िया बांदे साहब, जिन्होंने शहरों पर रिसेंटली काम शुरू किया है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इनका ताल्लुक प्राइम इंस्टीट्यूट से, ये मेरा ख़ल फौज में भी रह चुके हैं और अपनी तजारत भी करते हैं, तो माशाल्लाह मल्टी फैसेटेड आदमी है कि रिसर्चर भी हैं, सोल्जर भी रहे हैं और क्या कहते हैं ट्रेडर भी हैं या बिजनेस मैन भी हैं। ज़िया साहब वेलकम टू द शो।
शुक्रिया।
जाय साहब थोड़ा सा जरा जल्दी से अपनी छोटी सी जो भी इंट्रोडक्शन में कहना चाहेंगे वो भी बता दीजिए हमें कि क्या आपसे हमारी ऑडियंस क्या आपसे खास जो तारुफ कराए, क्या तारुफ कराएंगे आप अपनी ऑडियंस से।
अभी आपने खुद ही बता दिया है मेरे बारे में। मेरा अपना ताल्लुक नेवी से है जी, एक्स नेवल ऑफिसर हूँ। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्वाइन कर ली थी और मेरी लास्ट पोस्ट थी आई वाज हेड ऑफ कॉर्पोरेटेड पार्क चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी, जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान और चाइनीज गवर्नमेंट के दरमियान जी। वहां से फिर मैंने जो आप जैसे जिक्र कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया उसको छोड़ के, और इस वक्त मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बेसिकली मीट की ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। जहाँ तक ये शहरों का ताल्लुक है तो उसका मुझे जो इंटरेस्ट पैदा हुआ है वो चाइना में जाके हुआ था। आई वॉज इन चाइना फॉर माई ऑन बिजनेस और वहाँ मैंने अपनी कंपनी वगैरह भी खोली थी। तो वहाँ मुझे एक चीज का मतलब है कि इल्म हुआ कि चाइना के अंदर मेरी कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई थी, निम्बो शहर है, ये शहर शंघाई के जनूब में है, तकरीबन इसकी आबादी कोई 70 लाख के करीब है। तो वहाँ जो मेरी कंपनी रजिस्टर हुई थी वो रजिस्टर SEC चाइना में नहीं हुई थी, वो रजिस्टर हुई थी म्युनिसिपैलिटी में निम्बो शहर की। और ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था कि जो मेरी कंसल्टेंट थी वो मुझे म्युनिसिपैलिटी लेकर गई थी, जिन्होंने सारे मेरे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थी सारी उन्होंने की थी। और फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया, जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि इसमें इंटरेस्ट क्यों हो गया शहरों के अंदर काम करने का। तो तब मुझे पता चला कि एक अरब 30 करोड़ लोगों का मुल्क है, लेकिन उसमें फेडरल का एक अलहदा रोल है, प्रोविंस का अलहदा रोल है और शहरों का अलहदा रोल है, और शहरों का बड़ा डोमिनेंट रोल है। तो वहां मुझे फिर पता चला कि जो चाइना की मेन ड्राइव है, मतलब है कि चाइना के 1980 में जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो 19.4% थी और उस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 28% थी 1981 के ऑफिशियल फिगर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। और अब अगर आप 2017 के अपने जो सेंसस लेते हैं तो ऑफिशियली तो हम 36.5% पे हैं, ठीक है जी, लेकिन चाइना की 2015 में पॉपुलेशन 56% हो चुकी है अर्बन पॉपुलेशन, और वो मेरा ख्याल आपको भी पता है कोई 40-50 करोड़ लोग उन्होंने गुर्बत के लेवल से निकाल लिए। तो यहाँ मुझे एक चीज समझ में आई कि अर्बनाइजेशन का और पॉवर्टी रिडक्शन का एक बड़ा अहम ताल्लुक है। और जैसे भी आपने जिक्र किया है कि हम देहात देहात और एग्रीकल्चर बात कर रहे हैं, भाई पैसे तो जो असल बनाए जा रहे हैं, जो इकॉनमी जो तकरीबन कहीं गुना पाकिस्तान से बड़ी हो चुकी है, उसमें शहरों का कितना अहम रोल है। अच्छा जी, हमने एक इनिशिएट किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन कंपैटिटिव इंडेक्स। ये इस बुनियाद पे है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमने फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बात की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके फेडरल लेवल पे भी हो रही है, प्रोविंशियल लेवल पे भी हो रही है, व्हाट अबाउट सिटी लेवल? आप सिटी लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं, उसका क्या बेंचमार्क है? पाकिस्तान में जैसे आपने खुद जिक्र किया है, सिटीज को कोई इतनी लिफ्ट नहीं कराई जा रही, तो हमने थोड़ा सा पहले देखा कि पाकिस्तान में भाई शहरी पॉपुलेशन है क्या और कौन से शहर टारगेट करने चाहिए हैं अगर हम ये इंडेक्स डेवलप करें। तो हमने इसमें देखा कि पाकिस्तान में हमने कहा कि जी कि हम 5 लाख की आबादी का बेंचमार्क कर लेते हैं, तो 2017 के सेंसस को आप जब दोबारा लेकर आते हैं तो तकरीबन इसमें 14 शहर आते हैं जो कि जिनकी आबादी 5 लाख या उससे अबव है। अब ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है कि वो 5 लाख से अबव है, वो लोग कहते हैं कि वो बड़ी है, और आपको पता है जो डेफिनेशन पाकिस्तान में वो एडमिनिस्ट्रेटिव की है।
सर, ये 14 शहर जो से हैं, ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में या सिर्फ पंजाब में?
पंजाब में जी 8 शहर हैं, इसमें से सिंध में 3 हैं, एक केपी में और एक बलूचिस्तान में, और एक फेडरल आप ले रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर।
14 आते हैं सिर्फ,
14 शहर हैं जिनकी ऑफिशियल आबादी। वैसे तो जी पाकिस्तान में तकरीबन 97 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख या उससे ऊपर है, ठीक है जी, और तकरीबन 40 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 2 लाख या उससे ऊपर है। लेकिन हमने कहा कि चलिए जी टारगेट करना करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव से और डेटा के परस्पेक्टिव से, जो कि एक बहुत बड़ा अजाब भी है पाकिस्तान में निकालना।
ये मुझे थोड़ा सा हैरानगी हो रही है, क्योंकि मुझे याद है पिछले सेंसस पे जब मैंने देखा था तो 1 मिलियन से ऊपर जब हमने शहर निकाले थे तो वो निकल रहे थे तकरीबन 9 या 10। तो इस सेंसस में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि 14 बहुत कम लग रहे हैं। खैर, चलिए हो गए, बताइए।
ये तो जी ऑफिशियल फिगर्स हैं सेंसस में जो हमने मतलब एक बेंचमार्क किया है। अच्छा, अब उसमें से फिर हमने अपने 5 शहर पहले अपने फेज में सेलेक्ट किए, 4 प्रोविंशियल कैपिटल जी और 1 हमने फेडरल कैपिटल ले लिया, जिसका हमने इंडेक्स बनाना था मेट्रोपॉलिटन कंपेटिटिव इंडेक्स। अब जब मेट्रोपॉलिटन कंपेटिटिव इंडेक्स हमने इस मतलब बहराई के अंदर बनाया है कि इसके अंदर हमने शहरों को जज करना है कि ये इकोनॉमिकली कितने कंपेटिटिव हैं, तो हमने के 3 मेन पिलर्स डिजाइन किए। 3 पिलर से मुराद है, एक हमने बिजनेस डायनेमिज्म ले लिया इनका, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी ले लिया, और तीसरा लिवेबिलिटी एस्पेक्ट ले लिया। क्योंकि हमारे लिए जरूरी था कि पहले तो हम ये जज करें कि शहर इस वक्त खड़े हुए किधर हैं, फिर अकॉर्डिंगली अगला स्टेज ये होता है कि जहां आप कोई इंटरवेंशन सजेस्ट करते हैं सरकार को। अब आपको पता है कि कीपिंग इन व्यू के हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम कोई बड़ी प्राइमरी रिसर्च करते, तो हमने सेकेंडरी डेटा के ऊपर डिपेंड किया, और दूसरा काम हमने ये किया कि हमने इन सारे शहरों को विजिट किया और वहाँ फोकस ग्रुप डिस्कशन किया, जिसके अंदर हमने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी बुलवाए, जिसमें हमने बिजनेस कम्युनिटी से भी लोगों को बुलवाया, जिसमें हमने सिविल सोसाइटी से भी बुलवाया, और फिर उनसे बैठ के डिस्कशन भी की। एक ओपन एंड डिस्कशन थी कि जहाँ हमने अपनी चीज़ें प्रेजेंट की कि हम इस तरह शहरों को देख रहे हैं, और इसमें आप बताइए कि क्या क्या मसाइल हैं। तो मतलब हर शहर के अपने अपने मसले निकले हैं कि जी कि क्या क्या उनको रुकावटें हैं माशी तरक्की के अंदर, तो वो हमने चीज़ें, क्योंकि हम ये अपने माइंड में क्लियर करके चल रहे थे जी कि हमने बेसिकली ये चीज पुट करनी है पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के सामने कि बेशक आप मैक्रो लेवल पे बात करते रहें, बेशक आप बढ़ते रहें कि क्या टैक्स कम करना है, ज्यादा करना है, FBR को रिफॉर्म करना है, आप समझ रहे हैं कि एक्सपोर्ट खोलनी के बंद करनी है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, वॉट एवर द केस जो फेडरल लेवल पे या वो हो रहे हैं, लेकिन भाई जो एक्शन हो रहा है वो तो आपका ग्राउंड पे हो रहा है शहर के अंदर, जिस बेचारे को कोई इतना ज्यादा इल्म ही नहीं है चीजों का, और मेरा ख्याल है कि ना ही उसको इतनी नॉलेज होती है, वो तो बेचारा अपने को बेड़ा बचा के फिर रहा होता है कि मुझे कहीं कोई टैक्स वाला आके पकड़ ना ले, या कोई मेरे मतलब है कि मत्थे पे कोई चीज ला ला के मार दे। तो वी वर ट्राइंग टू वर्क आउट कि यार कंपेटिटिवनेस देखें, मसाइल उनके सुने, और फिर हम देखें कि हम शहरों के अंदर एक एनेबलिंग एनवायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स जो है वो हमने बनाया।
निकला क्या? What did you find out?
इसमें इंडेक्स के अंदर जी, हाँ जी, मैं इंडेक्स की जो आप जिक्र कर रहा हूँ, जो इंडेक्स के अंदर जो डेटा हमारे सामने आया है उसमें इस्लामाबाद जो है वो सबसे ज्यादा कंपेटिटिव निकला। अब आप कहेंगे जी कि इस्लामाबाद कैसे कंपेटिटिव निकला? भाई इस्लामाबाद का जो इशू है वो तो एक ब्यूरोक्रेटिक सिटी मशहूर है, तो हाउ कैन इट बी सो कंपेटिटिव? अब उसके अंदर जो इशू है वो ये है कि क्योंकि जब आप पर पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रहे होते हैं और सेकेंडरी डेटा के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो इस्लामाबाद की पॉपुलेशन कम है और इस्लामाबाद में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो आपके पास ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हर फिगर जो है, चाहे वो लिवेबिलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक डायनेमिज्म का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी का हो, आप पॉपुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो वो आपको ज्यादा नजर आता है। अब इसके अंदर एक जैसे कहना चाहिए पैराडॉक्स है, मतलब हम ये समझते हैं कि कराची और लाहौर जो है वो कंपेटिटिवनेस में आगे होना चाहिए है, लेकिन उसमें आपको एक चीज समझ में ये आती है कि कराची और लाहौर के कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो ड्राइव कर रहे हैं बेसिकली उस इकोनॉमी को, लेकिन साथ में वहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि स्लम्स में रह रही है, बहुत सारी पॉपुलेशन है जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर रह रही है, ठीक है जी, जो आपका सेकेंडरी डेटा कैश नहीं कर पा रहा, जो चीजें कैश नहीं कर पा रहा। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स को कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं समझनी चाहिए कि हम ये कहें कि ये है, ये सिर्फ एक टूल है जो कि हमने स्टार्ट किया है, और जिससे कि आप मेरा ख्याल के मजीद डिबेट के पॉइंट्स जो है वो निकल सकते हैं।
बहुत अच्छा काम किया आपने, आई थिंक इट्स वेरी गुड टू हैव एन इंडेक्स, और होने चाहिए ऐसी चीजें। मैं तो बल्कि इंकरेज करूंगा, वन ऑफ द रीजंस जो मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि आई एम होपिंग के स्टूडेंट्स और जो लोग सोचने वाले हैं वो इसको सुन रहे होंगे, तो मेरा उम्मीद है कि आपका इंडेक्स लेके उस पर और स्टूडेंट्स हमारे और लोग मज़ीद काम करेंगे। सोच ऐसे ही चलती है, तहकीक ऐसी चलती है, रिसर्च ऐसी चलती है कि अगर हम सब एक दूसरे के कंधे पे खड़े होकर काम करें। वो न्यूटन ने कहा था बहुत देर पहले, आपको याद है आइज़क न्यूटन, जिसने बड़ी फेमस ग्रेविटी की थ्योरी निकाली, उसके ऊपर आज भी हम चल रहे हैं। उसने बड़ा फेमसली एक ज़माने में कहा था कि जी, जब उसने इतना इतना क्या कहते हैं बड़ा काम कर दिया, ग्रेविटी की थ्योरी निकाल दी जो आज तक हम चला रहे हैं, और बाकी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसके ऊपर आज तक हमारा सारा काम चल रहा है, तो उसने कहा कि आई कुड ओनली डू दिस बिकॉज आई स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। कहता है इफ आई कुड सी फर्दर, इट इज़ ओनली बिकॉज आई स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। तो हमारे मुल्क में भी ये होना चाहिए। पर चलिए, ये बताइए कि ये तो आपने बड़ी मज़ेदार बात की कि इस्लामाबाद सबसे अच्छा शहर नज़र आ रहा है, उसकी वजूहात भी आपने बताई हैं और वजूहात बिल्कुल ठीक हैं। तो अब आपके इंडेक्स से ज़रा हम आगे चलें कि इस इंडेक्स को आप आगे किस तरफ लेके जाएंगे, अपने एक्सपीरियंस से आप क्या सोच रहे हैं, किस तरफ अब इसको लेके जाएंगे?
अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है जी, क्योंकि जो हमने बेसिकली शहरों से जब पूछा, हमने इवन मेयरों से भी मुलाकात की, लोकल गवर्नमेंट से भी मुलाकात की, तो हमारा सवाल उनसे ये था कि जी आपकी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई स्ट्रेटजी है शहर के लिए, कोई आपका इकोनॉमिक विजन है शहर के लिए, इतने बड़े बड़े शहर हैं जिसपे आप रूल कर रहे हैं, तो ये सिर्फ झाड़ू देने के लिए या पानी देने के लिए तो नहीं है। शहर का मकसद ये होता है कि लोग आके इधर रोजगार अपना कमाएं और अच्छा रोजगार कमाएं, उनके लिए मजीद वसाइल हो शहर के अंदर, उसके अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट आए, सरमाया आए, ताकि शहर में नई से नई इंडस्ट्री लगे।
सॉरी, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा
जी जी,
कि ये आपने कहां से निकाल दिया कि शहर का मतलब है रोजगार कमाएं?
देखिए जी, आप जो है
तो ये काम नहीं है।
मैं दोबारा आता हूँ उस बात पे। अब मैं इसमें दोबारा आपको चाइना की ही मिसाल देता हूँ।
चाइना अगर छोड़ दें, पाकिस्तान की बात,
पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, या चले हम जनरल बात कर लेते हैं कि जो दुनिया
का क्या काम, इस्लामाबाद में रोजगार कहाँ है सिवाय सिवाय हुकूमत के, और रोजगार कहाँ है?
इस्लामाबाद की अपना एक ट्रेडिंग कम्युनिटी भी है जी, और इस्लामाबाद के अंदर आपको शायद इल्म होगा कि 22 के करीब यूनिवर्सिटियां हैं जो कि अवार्ड गिविंग, मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस हैं। अब ये हर साल तकरीबन 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स जो हैं इन यूनिवर्सिटीज और अवार्ड गिविंग, मतलब है कि उसमें पढ़ रहे हैं। तो अगर आप सोचें कि अगर 4 साल की, तो हर साल आपके पास हजारों बच्चे निकल रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज से भी, जो कि क्वालिफाइड होंगे और जिनके लिए रोजगार चाहिए है। तो इस्लामाबाद में बेशक सरकार जो है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, लेकिन साथ में आपकी सर्विस सेक्टर भी है, कुछ आईटी सेक्टर भी है। अब अगर आप देखते हैं काफ़ी सारी, तकरीबन 150 के करीब कंपनियां हैं, जो मैं पाशा की बात कर रहा हूँ, जो इनकी पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर हाउसेस की है, उनकी तकरीबन 150 कंपनियों के इधर ऑफिसेज हैं और इनके डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। जो कि जाहिर बात है काम हो रहा है, शायद इतना मतलब है कि विजिबल नहीं है, नजर नहीं आ रहा, जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। तो हम जब बात कर रहे हैं कि शहरों के अंदर लोगों का आने का मकसद क्या होता है, छोटे शहर से बड़े शहर में, या देहात से छोटे शहर के अंदर या बड़े शहर के अंदर, ज्यादातर मकसद इक्तसादी होता है, माशी होता है। मतलब है और भी चीजें होती हैं, फैक्टर्स होती हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन लेना होता है, और
जैसा
टेक्योर
शायद मैं आपको
मेरी।
एक्सप्लेन नहीं कर सका, मेरा मतलब ये था कि अब मैं जो भी शहर देखता हूँ, इस्लामाबाद भी देखें लाहौर भी देखें, हमारा जो तरीक़ेकार शहर बनाने का है, मुझे करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि इस्लामाबाद में तो एक सेक्टर बनता है, उसके बाद दूसरा सेक्टर बनता है, तीसरा बनता है, चौथा बनता है, सेक्टर बनते हैं, वो सेक्टर जो उसे हैं आपने भी देखा है मैंने भी देखा है कि वो एक स्क्वायर माइल होता है जिसके अंदर बीच में एक छोटी सी मंडी होती है और इर्द गिर्द सारी कोठियाँ होती हैं। अच्छा, इसी तरह आप चले जाएं बहरिया टाउन चले जाएं या अपना डीएचए चले जाएं, डीएचए में भी उन्होंने तीन तीन मरले के कमर्शियल प्लॉट बनाए हुए हैं, बाकी उन्होंने कोठियाँ बनाई हुई हैं। हमारे शहरों में जैसा आप इंडेक्स करें तो एक और इंडेक्स में ज़रा देख लें प्लीज़, अपना मेरा ख्याल एक चीज़ डाल लें मेरी तरफ से। हमारे स्कूल जो हैं, आपको पता है स्कूल कोठियों में बने हुए हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी बहुत देर तक कोठियों में बनी रही हैं, अब जाके थोड़ी बहुत उनको जगह मिल रही है। और उससे उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे यहाँ इवन ऑफिसेस, बेशतर दफ्तर कोठियों में बने हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट अब फोर्स कर रही है उन्हें कि जाएं वो किसी जगह और कोठियों से बाहर निकलें, क्योंकि कुछ गंदी गंदी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिनके अंदर जगह खाली है। तो वो जो ठेकेदार है उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि भाई हमारे पास दो वरना हम तो किराएदार कोई नहीं मिल रहा है, मर जाएंगे, तो उनके लिए वो अब सुप्रीम कोर्ट उनको किराएदार दे रही है। हालांकि लोगों का जाने का वहाँ जी नहीं चाह रहा, जब मैं उन बिल्डिंगों में जाता हूँ मैं लोगों पर हंसता हूँ, मैं कहता हूँ तुम यहाँ क्यों बैठे यार, ये तो गन खाना है बिल्कुल। ठीक है, हमारे यहाँ दुकानें भी जो है वो भी कोठियों में बनती हैं, क्योंकि अदरवाइज तीन मरले पर बंदा क्या दुकान बनाए, शोरूम तो नहीं बना सकता तीन मरले पे, ना वो बनता है वॉलमार्ट ना कुछ। अब हाइपर आ रहा है तो हाइपर को सरकार ज़मीन दे रही है, हाइपर खुद ज़मीन नहीं खरीद रही। तो कहने का ये मतलब है कि ये शहर तो मुझे नहीं लगता तजारत के लिए बने हुए, इन शहरों में गुर्बत नहीं मिटेगी, इन शहरों में लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। इसीलिए पिछले 30 साल से हमारे लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बजाय शहरों में आके कमाई करें, वो बेचारे छुप छुप के यूरोप भाग रहे हैं, दुबई भाग रहे हैं, रिस्क लेके मर रहे हैं रास्ते में, वो कंटेनर में मर जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, क्योंकि उनको अपनी गुर्बत से निजात पानी है और वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। पर सिर्फ ये कि वो शहर यहाँ नहीं है, वो शहर बाहर है। तो ये भी तो हमें कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन देता है ना कि शहर उनको बेचारों को, मैं जानता हूँ बंदे जो मलेशिया पहुँच गए हैं, बैंकॉक पहुँच गए हैं, दुबई पहुँच गए हैं, चीन पहुँच गए हैं, पर यहाँ नहीं उनको शहरों में जगह मिलती। इस पे भी तो गौर करें ना, ये क्या बात सही है या मैं गलत कह रहा हूँ?
देखिए, जहां तक लोगों के माइग्रेशन का ताल्लुक है, चाहे वो पाकिस्तान के शहर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, असल चीज है मटेरियलिटी की। आपको पता है इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, डेफिनेटली हो रही, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, जैसे आपने जिक्र किया है कि छुप छुप के जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितने लोग बाहर जा रहे ही हैं उनसे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद लोग शहरों में आके भी बैठ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी बाहर नहीं जा सकता। और आपको भी पता
नहीं
है
नहीं सॉरी,
जो
मेरा
ये
पॉइंट,
देखो,
मेरा पॉइंट इमिग्रेशन की तरफ नहीं था, मेरा इशारा
हाँ
इमिग्रेशन की तरफ था, मेरा इशारा था कि हमारे शहरों में क्या, हमारे शहरों में
अच्छा
जगह
हाँ
कहाँ है तजारत की।
देखिए, ये जो आपकी बात है ना, जो भी आपने बात की कि बीच में मंडी बना ली, फिर बड़ी बड़ी कोठियां साइड पे बना ली, मतलब ये किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? इसी के लिए तो हम बात कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट इस चीज को कर रहा है कि शहरों की जो गवर्नेंस है उसमें कोई कोहेरेंस नहीं है, उस गवर्नेंस का कोई एक इकोनॉमिक एम नहीं है कि आपने अपने शहरों को कंपेटिटिव और लिवेबल कैसे बनाना है। जैसे दुनिया के, हम डेवलप वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे जी, हम इवन डेवलपिंग कंट्रीज में भी अगर चले जाते हैं, मैं इंडोनेशिया की मिसाल ले लेते हैं, या इवन साउथ अफ्रीका में ले लेते हैं, या ब्राजील में ले लेते हैं, हम अमेरिका को और यूरोप को छोड़ देते हैं, इन मुल्कों में भी अगर आप देखते हैं तो वहां के जो मेयर्स हैं वो काफी लीड कर रहे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है वो काफी लीड कर रही है, और तकरीबन हर शहर का एक अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जिसके साथ वो लिंक कर रहे हैं म्युनिसिपल सर्विसेज को शहर के अर्बन डिजाइन को। देखें, एक मेयर ने अगर इलेक्ट होना है इलेक्शन के अंदर आके, तो वो किसी एजेंडे के ऊपर इलेक्ट होगा ना जी,
वो तो
हमें जो उम्मीद है
जैसे
नई
आप बात
सरकार
कर रहे हैं,
से।
आप बात कर रहे हैं
हाँ
लोकल गवर्नमेंट की, हमने तो
जी
लोकल
जी
गवर्नमेंट आने नहीं देनी, وہ تو ہم نے تہیا کر لیا. لوکل گورنمنٹ کا ایکسپیریمنٹ دو تین دفعہ ہو چکا ہے, ہمارے پولیٹیشن نے لوکل گورنمنٹ کو رد کر دیا. پر نہ صرف ہمارے پولیٹیشن نے لوکل گورنمنٹ کو رد کیا ہے, ہماری سول سروس بھی لوکل گورنمنٹ کو رد کر دیا. بیکاز ہمارے شہر, دیکھیں میئر کوئی نہیں, ہمارا شہر میئر نہیں چلاتا, ہمارا شہر چلاتا ہے کمشنر اور ڈی سی, ہمارا شہر چلاتا ہے ڈی جی, سی ڈی اے ڈی جی, ایل ڈی اے ڈی جی, جی ڈی اے, وہ سارے سول سروینٹ ہوتے ہیں. وہ ان کو اب ایک عادت پڑ گئی ہے, اگر آپ میری کتاب پڑھیں, میں نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ ان کو ایک عادت ہو گئی ہے کہ انہوں نے پلاٹوں سے پیسے بنانے ہیں. پلاٹ تب بنتے ہیں جب کہ وہ شہروں میں کوٹھیوں کے پلاٹ بنائیں, وہ پلاٹ ان کو ملتے ہیں, ان پلاٹوں کے ذریعے ہمارے شہر ترقی کر رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ غربت مٹتی ہے, سب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس پہ آپ چلے جائیں پیچھے, ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں, چین کی طرف جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اگر آپ ڈکنز کی کتابیں ہی پڑھیں, چارلز ڈکنز کی جو کوئی پرانا لٹریچر آپ پڑھ لیں, یہ وکٹر ہیوگو پڑھ لیں, اس میں سب شہر میں آ کے جو وہاں بھوکے مر رہے تھے دیہات میں, وہ شہر میں آتے تھے اور وہاں وہ ماشاء اللہ ترقی کر جاتے تھے. وہ جو جین ویلڈر جین ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, لے مزرابلس میں وہ میئر بن گیا, بھوکا بندہ آ کے چوری کرتا ہوا یہ وہ. اسی طرح باقی لوگ بھی ہیں جو کہ ڈکنز میں بہت ایسی ایگزامپلس ہیں, شہروں میں لوگ آتے تھے, ٹامس ہارڈی میں بھی ہیں, ہر جگہ. تو شہروں میں جگہ ہوتی تھی, جگہ کیا ہوتی تھی, وہ سلمز ہوتی تھی, یہ نہیں کہ کوئی اچھی جگہ ہوتی تھی, پر یہ ہوتا تھا کاروبار سلمز ہوتی تھی, کیونکہ انریگولیٹڈ سٹیز ہوتی تھی, کوئی اوپر کمشنر ڈی سی نہیں بیٹھا ہوتا تھا, گند ہوتا تھا, چوری چکاری ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. ہمارے شہروں میں تو زیادہ, ہمارا شہر تو کوٹھی کے لیے, میری آپ سے یہ ہے گزارش, ہمارا شہر کوٹھی کے لیے, ہمارا شہر گاڑی کے لیے, ہمارا شہر کاروبار کے لیے نہیں ہے.
دیکھیں میں آپ سے بڑی کلیئر بات کرتا ہوں, آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ شہر تو مالک ہے کمشنر اور ڈی سی, ٹھیک ہے جی, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ شہر میں کیا ہونا ہے اور ان کا ڈیسیشن ہے کہ شہر میں پلاٹ بننے ہیں, ٹھیک ہے جی. شہر کو کوئی ایز این اکنامک اینٹیٹی نہیں ڈیولپ کرنا, شہر کو ایز اے پلاٹ مطلب ہے کہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے ریزیڈینشیل پلاٹ کے لیے. اب اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو باقی ماڈلز دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر, کہ باقی جو شہر لیویبل بنے یا کمپیٹیٹو بنے ہیں, اس میں چینج کیا بیوروکریٹس لے کر آئے ہیں؟ نہیں سر, دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا. اٹس نارملی از ڈریون بائی دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف دا سٹی اور ایون نیشنل لیول پہ بھی. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں انڈونیشیا کی. آپ کو شاید علم ہوگا کہ انڈونیشیا بہت عرصے تک ایک اتھارٹیرین رجیم کے اندر چلتا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. 99 میں سوہارتو صاحب نے ریزائن کیا تھا, اس کے بعد بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے. 2004 آن ورڈ ایک انڈونیشیا کے اندر گورننس کا سسٹم ذرا ڈیوالو ہوا پروونسز اور سٹی لیول کے اوپر, جہاں انہوں نے یہ کہا, مطلب جو جس کا میرے خیال کے سب سے اہم جس کا جز یہ تھا کہ پریزیڈنٹ بھی ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا جی, اس کے علاوہ گورنر بھی پروونس کا ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا اور میئر بھی ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے سر. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 2008 کے 2009 میں یہ جو ابھی کے موجودہ پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام ہے جوکو ویدودو, اب ویدودو صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پہ فرنیچر کا کام کرتے تھے, ہی واز ناٹ فرام اینی ایلیٹ کلاس.
میں آپ سے بالکل اگری کر رہا ہوں, ہسٹری میں دیکھیں, دنیا میں دیکھیں تو آپ کی بات بجا ہے اور میں بالکل مانتا ہوں. جو پاکستان میں جو پرابلم ہے نا ہمارا, جو سوچنے والی بات میری طرف سے, یہ آپ اس پہ کامنٹ کریے پلیز, کہ ہم سوچنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. میں کیا کروں, ہمارے لوگ جو ہیں وہ سوچنا چاہتے ہی نہیں, نہ پڑھنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب حکومت میں تھا تو اگر میں ایسی کوئی بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں سر ڈاکٹر صاحب باہروں آ گئے نے, بہت پڑھے لکھے ہیں, چھٹو انہیں گالی نہ سنو, ٹھیک ہے. ہمارے لوگ ایک سٹیٹس کو چاہتے ہیں, ہم وہ سٹیٹس کو میں سب موجود ہیں. ہم نے لارڈ مکالے کا جو کلونیل نظام ہے اس کو قائم رکھا ہوا ہے. اس کلونیل نظام میں یاد رکھیں کہ جو گورا تھا, جو ہمارا حکمران تھا, اس کو یہاں کوئی ترقی نہیں چاہیے تھی. وہ یہاں آتا تھا اور یہاں رہتا تھا اپنی شاپنگ ہیلڈ اور وہاں سیلفریجز میں کرتا تھا. اس کو یہاں صرف گوشت کی دکان چاہیے تھی, چھوٹی موٹی دکانیں چاہیے تھیں, اور باقی چھوٹی موٹی دکانیں ہمارے لیے تھیں, ٹھیک ہے. اب ہمارا شہر تو دکانداری کے لیے بنا ہی نہیں, نہ ہمارا بیوروکریٹ بنانا چاہتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈی ایچ اے کا ماڈل دیکھ لیں, پھیلی جا رہا ہے. وہ بارڈر چلا گیا, بارڈر سے پار بھی چلا گیا ہے, بٹ کوٹھی پہ کوٹھی بن رہی ہے. کوئی ادھر نہ فلیٹس ہیں, نہ ادھر کوئی کمرشل جگہ ہے. तो ये हमारा मॉडल है, हर जगह हम यही कोठी पे कोठी बनाई जा रहे हैं, तो इसमें मैं तो नहीं समझता। अच्छा, फिर हम एक और चीज़ करते हैं, इंडस्ट्री जो उनसी शहरों से बाहर होगी इंडस्ट्रियल इस्टेट में होगी, बाकी दुनिया में इंडस्ट्री शहरों के अंदर होती है। हमारी दुनिया में कोई कॉमर्स की जगह नहीं है। आप देखें अभी भी, आप ठीक कहते हैं मंडियाँ हैं, यानी मैं कहता मंडियाँ तो बनती हैं, इंसानी ज़रूरत है, बनेगी। हमारी मंडी अभी तक अकबरी वो मंडी है, जहाँ के पुराने वो जो कॉलोनियल सॉरी तो प्री कॉलोनियल घर थे उनके अंदर बनाई हुई है। हमने अभी तक वेयर हाउसेज भी नहीं बनाए शहरों में। आप मुझे बताएं ये जो निज़ाम है इसके अंदर क्या तरक्की हो सकती है कि नहीं?
देखिए, बात बड़ी सादा है, जो आपने बात की है, इस निज़ाम में तरक्की नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, अब आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता तो वही है जैसे आपने इंग्लैंड की बात की, इंग्लैंड ने हमारे मुल्क को तो कॉलोनियल तरीके से चलाया, लेकिन इंग्लैंड को वैसे ही चलाया उन्होंने कॉलोनियल तरीके से। वहां ऑन ग्राउंड चेंजेस आ रही थी, यहाँ चेंजेस अंग्रेजों ने नहीं करनी थी, यहाँ तो चेंजेस लोकल लोगों ने करनी थी। जैसे इंग्लैंड में जो चेंजेस आई है गवर्नेंस के अंदर, वहां के मुकामी लोगों ने की है। तो मतलब है कि रास्ता हमारा भी यही होगा। अब जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि जो इतना इंट्रेंच स्ट्रक्चर है, जो बकौल आप के डीएचए पहले ही जा रहा है, मतलब इवन बॉर्डर तक पहुंच गया है, तो ये सारा इंट्रेंच स्ट्रक्चर किस तरह चेंज होगा? इसका प्रोसेस तो डॉक्टर साहब पॉलिटिकल ही है। मतलब है कि मैं जो मर्जी बात करूं वो पॉलिटिकल है,
वो आपकी बात पॉलिटिकल तो वर्जा सब देखिए वो तो पॉलिटिकल है। हम पॉलिटिकल जब कह देते हैं तो वो मुझे मजा नहीं आता, क्योंकि पॉलिटिकल तो हर चीज़ इवेंचुअली पॉलिटिकल हो जाती है। वो उसने एरिस्टोटल ने कहा था ना कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, तो वो तो हर चीज़ ही हमारी पॉलिटिक्स है। बिल्कुल सही आपकी बात है, बट जो हमारा काम है, जो सोचने वाले लोगों का काम है कि हम प्रॉब्लम को तो ठीक तरह डिफाइन करें ना। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक पॉलिसी और थियोरी में आज तक सिटी का काम ही नहीं आया, नाम ही नहीं आया। हमारे बड़े बड़े मुफक्करों ने अगर आप देखें, आप शुरू कर दें पुराने ज़माने से लेके आज तक, डॉक्टर महबूबुल्लाह की किताब पढ़ लें, उसके बाद और किताबें पढ़ लें, शहरों का सब्जेक्ट ही नहीं आता उसके अंदर। ठीक है, मैं क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं कर रहा, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, ये नहीं कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़े आलम थे, बट ये है कि किसी ने शहरों के ऊपर काम ही नहीं किया कभी, और शहरों की आवाज़ ही नहीं उठाई और सोचा ही नहीं कि शहर एज ए यूनिट ऑफ डेवलपमेंट है। और आप किताबें ले लें तो वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और इधर जाते पर शहरों की बात नहीं करते, और शहरों की कोई डेफिनेशन भी नहीं ठीक देता। इसी वजह से सेंसस आज तक कन्फ्यूज फैल रहा है। अभी वो एक शाह साहब है रजा अली, उन्होंने काम किया, वो तो कहते हैं पाकिस्तान में 70% अर्बन आबादी है, हम सेंसस में अभी तक बमुश्किल 40 पे पहुँचे। यू नो, हमारे शहर इतना स्लो ग्रो कर रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती। बरतानिया का तो एकदम शहर 100 साल में बरतानिया वॉज फुली अर्बनाइज्ड, ठीक है, हम तो अभी तक 70 साल में लगता है शुरू भी नहीं हुई। तो हमारा सारी सोच ही जो सी है ना वो एंटी शहर है, सोच की तरफ मैं बात करूँ, बाकी पॉलिटिक्स से चलता रहेगा, वो तो आगे की बात है।
देखिए आपको मैं डॉक्टर साहब की बात में कर लूं बड़ी क्लियर इसके अंदर। देखिए आपको स्पेस ओपन नहीं मिलती, हमें भी पता है जो चेंज आती है वो इंक्रीमेंटल आती है चेंज वगैरह, और जिसके अंदर स्टेटस को अगर उसके सारे इंसेंटिव एंजॉय कर रहा है तो वो क्यों चेंज करेगा? मतलब जो बैठे हुए हैं, अब आपका ख्याल है कि डीसी विल बी अ चेंज एजेंट? नो सर, डीसी विल नॉट बी अ चेंज एजेंट। Who will be the change agent जिसके ऊपर आपकी रिलायंस होगी कि इवन जो अगर थोड़ी बहुत सोच भी है, और वो लोग जो कि सोचना चाहते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी हो, इक्तसादी तरक्की हो, लोगों की गुर्बत खत्म हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं पुश करना पड़ेगा, अलायंस बनाना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी छोटी छोटी स्पेस नजर आएगी उसके ऊपर आपको बिल्ड करना पड़ेगा। अब मैं आपको दो एक मिसाल ले दूं, एक है पाकिस्तान में जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स हैं जो बनाए गए हैं, जिसके अंदर आपको भी पता है कि कितनी चीजें अपने हाथ में रखी गई हैं फाइनेंशियल तौर पे, उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 2-3 चीजें हैं जिसमें मार्केट्स उन्होंने दीनी है, आपके टेक्नोलॉजी पार्क्स दिए हुए हैं, एसएमई सेक्टर्स या कॉटेज इंडस्ट्री को दिया हुआ है, इवन आपके मेट्रोपोलिटन जो बड़े शहर हैं इनके अंदर एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का यूनिट भी है। काम कर रहा नहीं कर रहा वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अंदर ये चीजें दी हुई हैं। अब दूसरी चीज है कि जहां तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है, अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ें तो उन मैनिफेस्टो में कोई बड़ा जिक्र नहीं है, सिवाय हमें जो एक सिल्वर लाइनिंग थोड़ी सी मिलती है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इस वक्त, वो है कि पीटीआई ने बात की है कि हमने सिटी गवर्नमेंट पे जो काम करना है उसमें हमने डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर करने हैं, और हमने बुनियादी तौर पे पैसा नीचे के लेवल पे देना है काम करने के लिए। देखिए, अब अगर हम काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर के जहां इतना एंटी सिटी बायस है, ठीक है जी, तो उसके अंदर हमें ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि जी कि पूरी आपको ग्राउंड तैयार मिलेगा फिर आप काम शुरू करेंगे। आपने इन्हीं कंस्ट्रेंट्स में काम करना है, इसी मुखालफत में काम करना है ब्यूरोक्रेसी की। अब हमने अगर एक टूल बनाया है मेट्रोपोलिटन इंडेक्स बनाया है,
देखिए मैं थ्योरी ऑफ चेंज की बात ही नहीं कर रहा। देखिए, थ्योरी ऑफ चेंज एक और सेपरेट सब्जेक्ट है और ज़रूर उस पर भी पॉडकास्ट कर लेंगे। मेरा तो सिर्फ इंटरेस्ट सिर्फ सिटीज़ में है फॉर द मोमेंट। ऑफकोर्स आज हमारा हर चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, और ये नहीं कि थ्योरी ऑफ चेंज पे बात नहीं करेंगे, थ्योरी ऑफ चेंज पे भी ज़रूर बात करनी चाहिए और होगी। पर देखिए ना, शहरों का मैं तो चाहता हूँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना हमारा। मैं तो सिर्फ इस बात पर बात कर रहा हूँ कि हमारे शहरों की कंसेप्चुलाइजेशन नहीं हुई ठीक तरह। हम सब सोच रहे हैं शहरों को, मैं बड़े बड़े लोगों से बात करता हूँ, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं, लोग मुझे हमेशा कहते हैं जी पार्क्स बनाए जाओ शहरों में, और वो भी जायंट पार्क्स बना दो। मैं कहता हूँ भाई, पार्क्स का शहरों में कोई ताल्लुक नहीं होता, छोटे पार्क्स होते हैं, सिटी स्क्वायर्स होते हैं। जो आप फ्लोरेंस में चल जाए छोटे छोटे पार्क्स, दैट्स व्हाट्स नेसेसरी। लंदन में चल जाए ठीक है, एक हाइड पार्क है, बाकी छोटे छोटे सिटी पार्क्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिटी पार्क्स होती है। अब अगेन ये कंसेप्चुलाइजेशन की बात है। अब जैसे शहबाज साहब ने मेट्रोज बना दिए, जो इन्होंने बनाया, मेरा ख्याल है सबसे गंदा आइडिया ये। अब लोग मेरे से बहस करते हैं, और हमें बहस करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल शहरों की जब बात करनी चाहिए तो हमें इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, पर क्या मेट्रो बनाने की ज़रूरत है, और वो भी जंगले पर, वो भी ऊपर पहाड़ पर? ये ज़रूरत है कोई? मेट्रो हम हर तरीके से बना सकते हैं, हम ज़मीन के नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते, सड़क पर भी रह सकते हैं। इन्होंने सबसे एक्सपेंसिव और सबसे अजीब तरीका चूज़ किया मेट्रो बनाने का। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। शहर को डिवाइड कर रहा है, वो वॉकेबिलिटी ख़त्म कर रहा है, सब कुछ उन्होंने वो कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें शहरों को कंसेप्चुलाइज करना चाहिए। दैट्स ऑल माई टेक इज़। बताइए।
नहीं, आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। और देखिए, दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये दो शहर नहीं है, जैसे हम कराची और लाहौर, और बदकिस्मती से बहुत ज्यादा जो हमारी तवज्जो रहती है इन दो शहरों के ऊपर रहती है बात करने के लिए, जो कि मेगा सिटीज बन गए हैं, जिनके अपने मसाइल हैं। दुनिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है शहरों की, वो सेकेंड टीयर शहर के लिए मैं डिफाइन करता हूँ कि अगर हम सेकेंड टीयर सिटीज के ऊपर भी फोकस करें, जहाँ शायद आपको मेट्रो की जरूरत नहीं है, जहां आपको बुनियादी तौर पे ट्रैफिक कंजेशन को मैनेज करने की जरूरत है, जहां आपको इनफॉर्मल सेक्टर, ये जो आपके रेडियो वाले हैं और ये हैं, इनको मैनेज करने की जरूरत है, वो रोड्स विल बिकम सफिशिएंट टू सर्विस योर रिक्वायरमेंट्स, जो कि शहर 20 लाख के, 30 लाख के, मतलब 15 लाख के शहर हैं जो आपके पास हैं, आप उनके ऊपर भी फोकस करें, उनके ऊपर भी काम करें। जहां तक आपने बात की है डेफिनेशन की, वो डिबेट रहेगी जी, वो डिबेट इवॉल्व होगी। जाहिर बात है कि शहरों को जब आप अंडर पॉपुलेट करेंगे तो आप फंड्स भी उसी तरह देंगे जब आप अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे, और जब फंड्स उस तरह देंगे तो फिर शहर मतलब एक डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी सोचना है कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की फाइनेंसिंग कैसे होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को कैसे इंगेज करना है हमने शहर के अंदर। देखिए जी, शहर के अंदर आपके दो बड़े इश्यूज हैं जो हम मतलब अपनी फाइंडिंग्स में भी और इसमें भी निकाल रहे हैं। एक तो है कि शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है जी, जो कि बकौल आपके फ्रेंडली भी होना चाहिए, सिटीजन फ्रेंडली भी होना चाहिए, और दूसरा है जो ह्यूमन कैपिटल है शहरों का, वो कैसे मतलब है कि आप डेवलप करें। और इन दोनों चीजों के अंदर एक कोहेरेंस होना चाहिए है, जिसके अंदर जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो इन चीजों के अंदर कोहेरेंस पैदा नहीं कर रहा।
मेरा ख्याल ये काफी टाइम हो गया, आखिर में एक छोटी सी बात मुझे बता दे, आप बताइए आप कैसे डिफाइन करेंगे शहर को?
देखिए जी, शहर की मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। शहर एक होता है पॉलिटिकल शहर और एक होता है इकोनॉमिक सिटी। अगर आप, मैं एक बात कहता हूँ, आप इस वक्त यूएस में बैठे हैं, तो यूएस में अगर आप एटलांटा को लेते हैं तो एटलांटा शहर की अपनी आबादी है 8.5 लाख, लेकिन जो मेट्रोपोलिटन एरिया है उसकी आबादी है 56 लाख। अब मैं यहाँ फैसलाबाद को लेता हूँ, फैसलाबाद शहर की आबादी ऑफिशियली 32 लाख है, लेकिन शहर से बाहर जब आप जिसे कहते हैं कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं, जिसमें चक जुमरा समुद्री और मतलब जो एरिए के आसपास हैं इलाके, उसकी आबादी 78 लाख हो जाती है। तो जब हम शहर को डिफाइन कर रहे हैं तो जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इकोनॉमिक डेफिनेशन है शहर की, जो लिंक कर रहा है. तो वट एवर प्लानिंग यू आर डूइंग फ्रॉम दैट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कि ये लोग शहर में आ भी रहे हैं कारोबार के लिए जो आसपास सराउंडिंग्स में हैं, ठीक है जी. तो जो भी आपने प्लानिंग करनी है, जो भी आपने ऑथराइजेशन करनी है, वो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हो कि शहर का इकोनॉमिक टेंटिकल्स कितने बड़े हैं. तो अगर आप शहर के सेंटर में खड़े हुए हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बॉल पार्क फिगर दे रहा हूँ, आप 25 किलोमीटर का रेडियस फेर लें, 25 किलोमीटर का रेडियस फेर के आप फिर उसको, मतलब जाहिर बात है थोड़ा सर्वे भी करना पड़ेगा, देन यू हैव एन आइडिया कि ये इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं. अगर वो इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं, यू डिक्लेयर इट एज अ मेट्रो इकोनॉमी एंड यू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट.
ओके ओके, ठीक है जैसा, ये मेरा ख्याल अब बाकी आइंदा करेंगे. तो बड़ी लंबी बहस है और होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, और हम इसको इंशाल्लाह जारी रखेंगे. आपसे अब दो पॉडकास्ट और करेंगे, एक तो शहरों पे कवर करेंगे आपका जब नया इंडेक्स निकलेगा, और एक आपसे थियोरी ऑफ चेंज पे बात करेंगे, क्योंकि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें वहाँ भी की हैं, तो उस पर भी बात करेंगे. तो आज के लिए मेरा ख्याल थैंक यू, फिर इंशाल्लाह.
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया.
सोच विचार के साथ, मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है.